भगवान राम का आविर्भाव बहुत निकट है, तो हम कुछ राम कथा से अमृत श्रवण कर रहे हैं। तो ये युद्ध कांड का 60वां सर्ग है, जिसमें कि कुंभकर्ण के वध की कथा शुरू होती है, उसको हम पढ़ रहे हैं। आप लोग ध्यान से सुनिए। भगवान श्री राम के बाण से पीड़ित होकर के रावण लंका में पहुंचा, भाग करके युद्ध भूमि से भाग करके भयभीत होकर के रावण लंका में पहुंचा। उसका अभिमान अब समाप्त हो गया, रावण का अभिमान, और व्यथा से बहुत व्याकुल हो गया। सप्रविश्यपुरीं लंकां राम बाण भयादितः भग्न दर्प सदा राजा बभूव व्यथितेन्द्रियः। जैसे सिंह जो है हाथी को पराजित कर देता है, ये गरुड़ जी बहुत बड़े सर्प को पराजित कर देते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री राम ने रावण को क्या किया, पराजित कर दिया। मातंग एव सिंहेन गरुडेने विपन्न अभिभूतो भवन राजा राघवेण महात्मना। भगवान राम के जो बाण हैं ब्रह्मदंड के समान थे, उनको याद करके राक्षस राज रावण के मन में बड़ी व्यथा होने लगी। राम के बाण को याद करके आज तक ऐसा बाण का प्रभाव उसने देखा नहीं था जीवन में। ये पहली बार उसको जीवन में आरंभ हुआ कि किसी के बाण इतने भयानक हो सकते हैं। ब्रह्मदंड प्रतीकाना विद्युंचल के वर्तसाम स्मरण राघव बाणानाम दिव्य थे राक्षसेश्वर। रावण लंका में एक सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ है और राक्षसों की ओर देखता हुआ अब क्या कहता है, आप लोग ध्यान से सुनिए। रावण बहुत शोक और व्यथा से अब बोल रहा है। सकांचनमयम दिव्यम आश्रित्य परमासनम विप्रेक्षमाणो रक्षांसि रावणो वाक्यम अब्रवी। क्या कह रहा है रावण, आज पहली बार उसको अनुभव हुआ जीवन में निराशा पहली बार उसको दिखाई दे रही है। क्या कहता है, मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, मेरी सब तपस्या बेकार हो गई, क्योंकि आज इंद्र के समान पराक्रमी मुझ रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। सर्वं तं खलु मे मोघम यत्तत्तम परमं तपः यत्समानो महेन्द्रेण मानुषेण विनिर्जितः। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था, ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा, इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ ये घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। इदं तं ब्रह्मणो घोरं वाक्यं मामुद्युपस्थितं मानुषेभ्यो विजानीहि भयं तमिति तत्तथा। मैंने तो वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से, क्या कि देवता दानव गंधर्व यक्ष राक्षस और सर्पों से मेरा वध ना हो सके, परंतु मनुष्यों से तो अभय होने की वर याचना नहीं की थी। देव दानव गंधर्वैर यक्ष राक्षस पन्नग अवध्यत्वं मया प्रोक्तं मानुषेभ्यो न याचितम्। अब रावण को याद आ रहा है पहले के भी जो घटनाएं हुई हैं और प्राचीन काल में भी जो साप मिला था उसको, अब वो कह रहा है इक्ष्वाकुवंशी राजा अनरण ने मुझे साप देते हुए कहा था। राम के पहले कई पीढ़ियां ऊपर एक राजा थे अयोध्या के, कौन, अनरण ने, उन्होंने साप दिया था। क्या कहा था, राक्षसाधम कुलांगार दुर्मते मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र मंत्री सेना घोड़े और सारथी सहित युद्ध में मार डालेगा। मालूम होता है अनरण ने जिसकी ओर संकेत किया था ये दशरथ कुमार राम वही मनुष्य है। तमेवम मानुषम मन्ये रामम दशरथात्मजम इक्ष्वाकुकुल जातेन अनरण्येन यत्पुराम उत्पत्स्यति हिमवंशं पुरुषो राक्षसाधम यस्त्वां सपुत्रं मां सामात्यं सबलं सासुसारथिं निहनिष्यति संग्रामे त्वां कुलाधम दुर्मते। तो आप समझे कि उसको ब्रह्मा जी का वरदान याद आया। ब्रह्मा जी ने कहा था कि तुमको मनुष्यों से भय प्राप्त होगा, आज वो दिन आ गया मेरे लिए। अब याद आया उसको और किसकी याद आई? अनरण्य, राजा अनरण्य ने कहा था कि उनके वंश में एक ऐसे श्रेष्ठ मनुष्य होंगे जो तुझे मारेंगे और सब तुम्हारा वंश सहित खत्म करेंगे। तीसरी बात याद आई क्या? इसके सिवा पूर्व काल में मुझे वेदवती ने भी श्राप दिया था क्योंकि मैंने उसके साथ बलात्कार किया था। जान पड़ता है ये महाभागा जनक नंदिनी सीता होकर वही वेदवती ही प्रकट हुई हैं। वेदवती ने साफ दिया था कि मैं तेरे विनाश का कारण बनूंगी, तो वही वेदवती अब इस जन्म में सीता बन करके मेरा विनाश कर रही हैं। सत्तो हम वेदवत्याच यथा साधर्षिता पुरा सेयं सीता महाभागा जाता जनक नंदिनी। अच्छा, और रावण को और क्या याद आया? उमा देवी का साप याद आया। उमा देवी का साप याद आया क्या? कि जब कैलाश को उठाया था तो कैलाश हिलने लगा, तो कैलाश पर्वत में जो उमा देवी थी उन्होंने साप दिया। क्या साप दिया था उन्होंने? कि तेरी मृत्यु स्त्री के कारण होगी क्योंकि तू मुझे तकलीफ दे रहा है। क्यों, क्या तकलीफ दे रहा था रावण? कैलाश को उठा रहा था तो कैलाश हिल रहा था, उमा देवी को तकलीफ हो रही थी। तो उमा देवी ने साथ दिया था कि तेरा विनाश स्त्री के कारण होगा। तो उमा देवी का साप आज सफल हो रहा है। और नंदीश्वर का साप, शिव जी के जो सेवक हैं नंदीश्वर, उन्होंने साप दिया था। नंदीश्वर की का जो रूप है वो बंदर के समान है, तो रावण हंसा था उनको देख करके। तो उन्होंने कहा था कि मेरे समान रूप और पराक्रम वाले बानर तेरे कुल का नाश करेंगे, तो नंदीश्वर का साप है। फिर नलकूबर ने साप दिया, रंभा के साथ बलात्कार किया तो नलकूबर ने साप दिया कि अगर बलात्कार से किसी स्त्री का अगर तुम भोग करोगे तो मर जाओगे, तो नंदीश्वर का भी साप। और फिर कुंज के स्थला जो अप्सरा थी उसके साथ बलात्कार किया रावण ने, तो ब्रह्मा जी ने साप दिया कि स्त्री के साथ अगर बलपूर्वक भोग करोगे तो नष्ट हो जाओगे। तो इस प्रकार से अब रावण को कई कई लोगों के साप याद आए। सच है रावण कह रहा है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। उमानंदी सरस्वती रम्मा वरुण कन्या यथोक्ता तन्मया प्राप्तम न मिथ्या ऋषि भाषितम। अब ये साप ही मेरे ऊपर भय या संकट लाने में कारण हुए हैं। इस बात को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का प्रयत्न करो। राक्षस लोग राजमार्गों और गोपुरों के शिखरों पर उनकी रक्षा के लिए डटे रहे हैं। मेरी रक्षा करो सब राक्षस लोग। वो कैसे रक्षा करो, क्या करो? राजमार्गों में और गोपुरों में डट करके खड़े रहो। एतदेव समागम्य यत्नं कर्तुं निहारत राक्षसाश्चापि तिष्ठन्तु चर्या गोपुर मूर्धतु। अच्छा, अब कुंभकर्ण को जगाओ। कुंभकर्ण की जो नींद है उसकी कोई तुलना ही नहीं है। ब्रह्मा जी का साप प्राप्त हुआ है कुंभकर्ण को सोने का, इसलिए वो सो रहा है, उसको जगाओ। चाप्रतिमं गंभीर्यो देवदानव दर्पः ब्रह्मशाप विभूतस्तु कुंभकर्णो विबोधताम। प्रहस्त मारा गया और मैं भी युद्ध में परास्त हो गया, ऐसा जानकर महाबली रावण ने राक्षसों की भयानक सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के दरवाजों पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो, परकोटों पर भी चढ़ जाओ और निद्रा के अधीन हुए कुंभकर्ण को जगा दो। समरे जितमात्मानं प्रहस्तं सानिसूदितं ज्ञात्वा रक्षो बलं भीमं आदिदेश महाबलं द्वापरे सुयत्ना कृतां प्राकारश्चाधिरुह्यतां निद्रावसे समाविष्टा कुंभकर्णो विबोधताम। क्या कह रहा है रावण कि देखो मैं तो दुखी हूं, चिंतित हूं और मेरी कोई कामना पूरी नहीं हो रही है, और वो राक्षस जो है निश्चिंत होकर के सो रहा है, ये कितनी गंदी बात है। रावण कह रहा है मैं दुखी हूं, भयभीत हूं और मेरी कोई भी इच्छा पूरी नहीं हो रही है, और वो जो है ना निश्चिंत होकर के सो रहा है। कौन? कुंभ। वो कभी 9 महीने तक सोता है, कभी 7 महीने तक सोता है, और कभी 10 महीने तक सोता है, कभी 8 महीने तक सोता रहता है। आज से पहले 9 महीने पहले मुझसे पूछ करके सोया था कि मैं सोने जा रहा हूं। सुखम स्वपति निश्चिंता कामोपहत चेतना नव सप्तय दशास्तोचा मासां स्वपति राक्षसं मंत्रं कृत्वा प्रसुप्तोऽयम् इतस्तु नवमेहनी। अतः तुम लोग महाबली कुंभकर्ण को शीघ्र जगा दो, महाबाहु कुंभकर्ण सभी राक्षसों में श्रेष्ठ है, वह युद्ध में बाणरों और उन राजकुमारों को शीघ्र ही मार डालेगा। कौन से राजकुमारों को मार डालेगा? राम लक्ष्मण को। तम तो बोधयत क्षिप्रम कुंभकर्णम महाबलम सही संख्ये महाबाहु ककुदम सर्व रक्षसाम वाणराम राजपुत्रो चा क्षिप्रमेव हनिष्यति। समस्त राक्षसों में प्रधान ये कुंभकर्ण युद्ध में हमारे लिए सर्वोत्तम विजय के समान है, किंतु खेत की बात है कि वह मूर्ख निद्रा में आसक्त होकर सदा सोता रहता है। एतके तो परम संख्ये मुख्यो वै सर्व रक्षसाम कुंभकर्ण सदा शेते मूढ़ो ग्राम्य सुखे रताम। यदि कुंभकर्ण को जगा दिया जाए तो इस भयंकर संग्राम में मुझे राम से पराजित होने का शोक नहीं होगा। रामेणाभिनिरस्तस्य संग्रामेऽस्मिन् सुदारुणे भविष्यति न मे शोका कुंभकर्णे विबोधिते। यदि इस घोर संकट के समय भी कुंभकर्ण मेरी सहायता करने में समर्थ नहीं हो रहा है तो इंद्र के समान बलशाली होने पर भी उससे मेरा प्रयोजन क्या है, मुझे क्या फायदा कुंभकर्ण से। किं करिष्याम्यहं तेन सकृतुल्य बले नहीं ईदृशे विस्ने घोरे यो न साहाय्याय कल्पते। अब ध्यान से सुनिए कुंभकर्ण को जगाने का कितना भारी जो है ना प्रयास किया गया। राक्षसराज रावण की वो बात सुनकर सभी राक्षस बड़ी घबराहट में पड़कर कुंभकर्ण के घर गए। केतु तन्वचनम श्रुत्वा राक्षसेन्द्रस्य राक्षसान् जगमुह परम संभ्रांता कुंभकर्ण निवेशनम। अब वो जो राक्षस हैं ये खून और मांस का भोजन करने वाले थे, रावण की आज्ञा पाकर के खाने पीने की बहुत सी सामग्री लेकर के कुंभकर्ण के पास गए, यानी खून और मांस बहुत ज्यादा लेकर के। कुंभकर्ण जैसे जाएगा तो उसको बहुत सा खून और मांस की जरूरत पड़े, तो पहले से सब तैयार करके कुंभकर्ण को जगाने के लिए गए। अगर उसको नहीं मिलेगा तो राक्षसों को ही खा जाएगा वो। सो करके उठेगा उसको भूख लगेगी, तो जो मिलेगा उसे खा जाएगा, इसलिए बहुत सा खून और मांस उसको खिलाने के लिए वो ले गए। कुंभकर्ण एक गुफा में रहता था जो बड़ी बड़ी भारी गुफा थी, लंबाई और चौड़ाई एक एक युजन की थी, एक युजन लंबा गुफा और एक युजन चौड़ा, मतलब 12 किलोमीटर लंबी और 12 किलोमीटर चौड़ी वो गुफा थी इतनी बड़ी और दरवाजा बहुत बड़ा था। उसमें प्रवेश करते ही कुंभकर्ण की सांस के वेग से वे पीछे को ठेल दिए गए, जैसे जैसे गए तो श्वास उसकी बाहर निकल रही थी, तो इतनी तेज हवा कि उनको पीछे भागना पड़ा, वो हवा के धक्के से, श्वास के धक्के से। फिर बड़ी कठिनाई से पैर जमाते हुए पूरा प्रयत्न करके गुफा के भीतर घुसे, तो श्वास के द्वारा उनको बहुत दिक्कत हो रही थी अंदर जाने में। उस गुफा की फर्श में रत्न और सोना जड़ा था, और उन राक्षसों ने देखा कि भयानक पराक्रमी कुंभकर्ण सो रहा है। महानिद्रा में डूबा हुआ कुंभकर्ण बिखरे हुए पहाड़ के समान खर्राटे ले रहा था, बिखरा हुआ पहाड़ हो जैसे। अतः वे सब राक्षस एकत्र होते जगाने की चेष्टा करने लगे। उसका सारा शरीर रोमों से भरा था, रोए, वह सर्प के समान सांस लेता और अपने निश्वास से लोगों को चक्कर में डाल देता था। वहां सोया हुआ राक्षस भयानक बल विक्रम से संपन्न था, उसकी नासिका के दोनों क्षेत्र बड़े भयंकर थे, जहां से श्वास निकल रही थी भयानक। मुंह पाताल के समान विशाल था, उसने अपना सारा शरीर सैया पर डाल रखा था, उसके देह से खून और चर्बी की गंध निकल रही थी, उसकी भुजाओं में बाजूबंद शोभा पाते थे, मस्तक पर किरीट धारण करने के कारण सूर्य देव के समान प्रकाशित हो रहा था। इस रूप में राक्षस कुंभकर्ण को उन राक्षसों ने देखा। फिर उन बड़े बड़े राक्षसों ने कुंभकर्ण के सामने प्राणियों के मेरु पर्वत जैसे ढेर लगा दिए, मतलब मांस का ढेर लगा दिया, मेरु पर्वत जैसा बहुत भारी पहाड़ हो जैसे मांस का पहाड़ रख दिया भोजन के लिए। उन राक्षसों ने मृगों, भैंसों और सुअरों के समूह खड़े कर दिए जिंदा, जो है मांस काट काट करके भी एक पहाड़ बना दिया, और जिंदा भी जो है ना क्या है मृग, भैंसे, सुअर खड़े कर दिए। और इतना ही नहीं, कुंभकर्ण के आगे खून से भरे हुए बहुत से घड़े और बहुत प्रकार के मांस रखे। फिर कुंभकर्ण के शरीर में बहुत कीमती चंदन का लेप किया, बहुत कीमती चंदन, ये फायदा क्या है, वो तो सो रहा है, कुछ फायदा नहीं है, ये बड़ा कीमती चंदन उसके शरीर में लगाया। फिर दिव्य सुगंधित फूल और चंदन सुंघाया, लेकिन क्या फायदा सुंघाने से, धूपों की सुगंध फैलाई और फिर उसकी स्तुति करी कुंभकर्ण की, लेकिन फायदा क्या स्तुति करने से। और फिर राक्षस खड़े वहां पर मेघों के समान गंभीर ध्वनि से गर्जना करने लगे, लेकिन वो नहीं उठा। अब उन राक्षसों को बड़ा गुस्सा आया कि हम तुमको इतना गुणगान कर रहे उठ नहीं रहा है, तो उन्होंने क्या किया, बहुत शंख बजाने लगे, जोर जोर से शंख बजाने लगे। अब गुस्सा धीरे धीरे उनका गुस्सा बढ़ता जा रहा है ना, वो उठ नहीं रहा है, तो पहले तो बहुत चंदन लगा रहे हैं, लेप कर रहे हैं और स्तुति कर रहे हैं, जब नहीं उठ रहा है तो उनको गुस्सा आया, तो फिर जोर जोर से शंख बजाना शुरू किया। अब गर्जना करने लगे, खूब जोर जोर से दहाड़ने लगे गुस्से में, जिससे उठे वो फिर भी नहीं उठे, फिर भी नहीं उठा, तो फिर क्या करने लगे, राक्षस सिंहनाद करने लगे बहुत जोर से शेर के समान, तान ठोकने लगे, कुंभकर्ण के अंगों को झकझोड़ने लगे, ऐसे ऐसे पकड़ पकड़ के खींचने लगे उसको, और बहुत जोर शब्द किया उन्होंने कुंभकर्ण जगाने के, ने दुरा स्फोट या मासुस चिक्षे पुस्ते निशाचर कुंभकर्ण विबोधार्थम चतुस्ते विपुलम स्वरम। अब शंख, भेरी और पड़ों बजाए, ताल ठोके, गर्जना की, उस गर्जना से जितने पक्षी सब दिशाओं में भागे आकाश में उड़ते हैं और इतनी तेज गर्जना थी कि पक्षी डर के मारे गिर जाते हैं आकाश से भी। सोचो कितना भारी शोर किया उन्होंने कि पक्षी भी उसको सुनकर के आकाश से गिर जाते हैं। परंतु उससे भी कुंभकर्ण नहीं जागा। तब राक्षसों ने क्या किया, बहुत गुस्सा किया और गुस्से में क्या किया उन्होंने, हाथों में भुसुंडी मूसल और गदाएं ले ली। क्यों भुसुंडी मूसल और गदा क्यों ली, पीटने के लिए उसको। कुंभकर्ण तो सुख से सो रहा था, उसके सुख में कोई आना बाधा नहीं पड़ रही, उसके पूरा सुख ले रहा है सोने का। हाँ तो उस दशा में राक्षसों ने उसकी छाती पर पर्वत शिखर मारे, पर्वत के शिखर मारे, मूसल मारे, गदा मारे, मुद्गर मारे और मुक्के मारे उसकी छाती के ऊपर। तमसल श्रृंगेर मुसलेर गदा वक्षस्थले मुद्गर मुष्टिभिश्च सुखम प्रसुप्तम भवि कुंभकर्णम रक्षां सुदग्राणे तदाने जगनुम। परंतु वो मारने वाले राक्षस उसके श्वास के द्वारा ठेल दिए गए तो उनको भागना पड़ा, इतनी उसकी जोर से श्वास निकल रही थी कि उसके आगे ठहर नहीं पाते, खड़े नहीं हो पाते हैं राक्षस लोग, उसको मारना चाहते हैं तो खड़े नहीं हो पाते। तस्य निश्वास भाते कुंभकर्णस्य रक्षसः राक्षसा कुंभकर्णस्य स्थातुं सैकुर्ण चांग्रतः। अब वस्त्रों को खूब कस करके बांधा उन्होंने राक्षसों ने, अपने वस्त्रों को खूब कस कर क्यों बांधा, जिससे हाँ क्योंकि हवा से उड़ रहे हैं ना उनके कपड़े, तो उनको भी भागना पड़ रहा है। और हवा कहाँ से आ रही है, उसके श्वास से। तो उन्होंने कसके अपने कपड़े बांधे जिससे कि उड़े नहीं, श्वास से कसके बांधे। भयानक पराक्रमी राक्षस अपना भयानक पराक्रम दिखाने लगे। लगभग 10,000 राक्षस अपना पराक्रम दिखा रहे हैं उसकी निद्रा के विरुद्ध, और कुंभकर्ण को घेर करके खड़े हो गए। एक साथ मृदंग पड़ाव भेरी शंख और धोसे बजाना आरंभ किया, बाजे बजाते और गर्जना करते रहे तो भी कुंभकर्ण की निद्रा नहीं टूटी। जब किसी प्रकार नहीं जगा सके तो पहले से भी ज्यादा भारी उन्होंने प्रयत्न शुरू किया। अब क्या करते हैं, वो घोड़ों को उसके ऊपर चलाया, घोड़े उसके ऊपर चलाए, गधे ऊंट और हाथियों को डंडों से कोड़ों से अंकों से मार मार करके उसके ऊपर चलाया, सारी शक्ति लगाकर और भेरी मृदंग संग बजाने लगे और पूरा बल लगाकर बड़े बड़े लकड़ के समूहों मुद्गरों और मुसलों से भी प्रहार करने लगे। उस महान कोलाहल से पर्वतों और वनों सहित सारी लंका गूंज उठी। पूरी लंका सौजन की लंका है, सौजन मतलब 1200 किलोमीटर तक आवाज गूंज रही पूरी लंका में, लेकिन वो नहीं उठ रहा है। परंतु कुंभकर्ण नहीं जागा, नहीं जागा। अश्वानुष्ट्रान खरान नागान यज्ञुर्दंड कसांकुश भेरी शंख मृदंगांच सर्व प्राणे रवादयन जग्नुश्चास्य गात्राणी महाकाशक शंकर मुद्गरैर मुसलैश्चापि सर्व प्राणे समुद्यत तेन नादेन महता लंका सर्वा प्रपूरिता सपर्वत वना सर्वा सोपि नैव प्रबोध्यते। फिर सब हजारों ध्वंस एक साथ बजाए गए और लगातार बजाए रहे ले, और जो डंडे थे उस सोने के बने हुए डंडे थे उससे बजाए धोसे बजाए। सोचिए सोने के डंडे से धोसे बजाए तो कितनी तेज आवाज होगी। हाँ तो भी अतिशय निद्रालु निशाचर नहीं जागा। तब राक्षसों को बहुत क्रोध आया, फिर वे रोष से भरे हुए सभी भयानक पराक्रमी निशाचर उस राक्षस को जगाने के लिए अब पराक्रम करने लगे, कोई धौंसे बजाने लगे, कोई उसके सिर के बाल नोचने लगे, सिर के बाल नोचने लगे। सोचो, अगर सिर के बाल कोई नोचे तो कितना तकलीफ होती है। उसके सिर के बालों को नोचना शुरू किया, कोई दांतों से उसके कान काटने लगे। दूसरे राक्षसों ने उसके दोनों कानों में 100 घड़े पानी डाल दिए। क्या समझे? 100 घड़े पानी डाल दिए तो भी महानिद्रा के बस में पड़ा हुआ कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता। खुद कुंभ है सतानन्य समय सिंचंत कर्णयो न कुंभकर्ण पस्पंदे महानिद्रा वसंगता। अब तो और ज्यादा गुस्सा आया राक्षसों को, तो क्या किया? बलवान राक्षस कांटेदार मुद्गर हाथ में लेकर उन्हें उसके मस्तक पर मारने लगे। क्या मारने लगे? मस्तक पर कांटेदार मुद्गर मारने लगे, मस्तक पर, छाती पर और अन्य अंगों पर पीटने लगे उसको कांटेदार मुद्गरों से। और फिर रस्सियों से बंधी हुई शतघ्नियों द्वारा उस पर सब ओर से चोटें मारने लगे। फिर भी उस महाकाय राक्षस की नींद टूटी नहीं। इसके बाद उसके शरीर पर हजारों हाथी दौड़ाए, तब उसे कुछ स्पर्श मालूम हुआ तो वह जाग उठा। तब थोड़ा थोड़ा स्पर्श मालूम पड़ा कि अच्छा हाँ कुछ कुछ हो रहा है। हजारों हाथी जब उसके ऊपर चले तो उसे लगा कि हाँ अब कुछ कुछ हो रहा है, मतलब बड़ा आराम से कुछ जागा कि जैसे कि कुछ चलो कोई जगा रहा है, धीरे धीरे जगा रहा है। हजारों हाथी जब चले उसके शरीर के ऊपर तो वारणानाम सहस्रम चा शरीर प्रधानितम कुंभकर्ण सदा बुद्ध्वा स्पर्शम परमे बुद्ध्यते। उसको बहुत अच्छा लगा जब हाथी उसके ऊपर चले, हजारों हाथी, उसको बहुत अच्छा लगा। तो सोचता है कि मुझे कोई बहुत आनंद पूर्वक जगा रहा है, मुझे बहुत आदर पूर्वक कोई जगा रहा है, ऐसा उसको लगा। जैसे भी उसके ऊपर पहाड़ के शिखर और वृक्ष गिराए जाते थे तो उसको तो कुछ पता नहीं चला उसको कि कोई कुछ कर रहा है, कोई अपराध नहीं कर रहा है इस बात। हाथियों के स्पर्श से जब उसकी नींद टूटी तो भूख से पीड़ित होकर के सहसा उछल कर खड़ा हो गया। बहुत जोर से भूख लगी उसको, उसकी दोनों भुजाएं सर्प के समान जान पड़ती थी, पर्वत के शिखरों के समान जान पड़ती थी। तो जम्हाई लिया उसने, बड़ा भारी मुंह उसका खुला। इसके बाद जो श्वास निकलती थी उसके मुख से पर्वत से चली हुई वायु के समान प्रतीत होती थी। नींद टूटे हुए कुंभकर्ण का स्वरूप प्रलय काल में समस्त प्राणियों के संघार की इच्छा रखने वाले काल के समान जान पड़ता था। इसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें अग्नि और विद्युत के समान दिखाई देती थीं। ऐसी लगती थी मानो दो महान ग्रह प्रकाशित हो रहे हों। अब राक्षसों ने तुरंत खाने पीने की वस्तुएं जो रखी थी तो कुंभकर्ण को दिखलाएं कि देखो ये सब तुम्हारा भोजन है, खाओ। तो महाबली राक्षस बात की बात में बहुत से भैंसों और सुअरों को खा गया तुरंत। उसे बहुत भूख लगी थी, उसने भरपेट मांस खाया और प्यास बुझाने के लिए क्या पिया? खून। कितने घड़े चर्बी के बने उसने पी लिए और कितने घड़े शराब के वो पी लिए। अब उसको तृप्त जान करके राक्षस उछल कर सामने आए, उसको प्रणाम किया। अगर उसको इतना खाने को नहीं मिलता और राक्षस आते उसको प्रणाम करने के लिए तो जानते क्या होता? उसके भोजन बन जाते। जब देखा कि भोजन उसका मतलब पूरा हो गया तब उसके सामने आए, उसको प्रणाम किया। और चारों ओर खड़े हो गए राक्षस लोग। तब हाँ, उसने जो है राक्षसों को देखा, कुंभकर्ण ने उन राक्षसों को सांत्वना दी और विस्मित होकर के पूछा, आप लोगों ने मुझे आदर पूर्वक किसने जगाया है? कहता है आदर पूर्वक आप लोगों में से किसने जगाया है? आदर पूर्वक जगाया वो तो बहुत क्रोध पूर्वक जगाया है और पूरा उन्होंने अपना पराक्रम दिखलाया और वो कहते हैं आदर पूर्वक आपने मुझे क्यों जगाया है? राक्षस राज ब्राह्मण कुशल से है ना, कोई भय तो उपस्थित नहीं हुआ है। किमर्थम अहम आदृत्य भवद्भि प्रतिबोधिताम् कच्चन सुकुशलम राज्यो भयम वाने है किंचन। तो कुंभकर्ण जब रोष में भरकर इस प्रकार पूछने लगा तब राजा रावण के सचिव युपाक्ष ने हाथ झुककर कहा, महाराज हमें देवताओं से कोई भय नहीं हो सकता, इस समय केवल एक मनुष्य से भय प्राप्त हुआ है। इस समय एक मनुष्य से हमारे लिए जैसा भय उपस्थित हुआ है वैसा भय कभी दैत्यों और दानवों से भी नहीं हुआ था। पर्वत के आकार वाले बानरों ने आकर इस लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया है और सीता हरण से दुखी हुए राम से हमें बहुत भय की प्राप्ति हुई है। पहले एक ही बानर ने यहाँ आकर इस महापुरी को जला दिया और हाथियों और साथियों सहित राजकुमार अक्ष को भी मार डाला। कौन, किसने? हनुमान जी ने। श्री राम तेजस्वी हैं, उन्होंने राक्षस राज रावण को युद्ध में हराकर जीवित छोड़ दिया और कह दिया कि लंका को लौट जाओ। ये तो बड़े शर्म की बात है कि राम ने राक्षस राज रावण को हरा करके क्या कहा, जाओ लंका में लौट जाओ। कितनी शर्म की बात है। युद्ध में भाई की पराजय से संबंध रखने वाली युपाक्ष की बात सुनकर कुंभकर्ण आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगा और युपाक्ष से बोला, क्या कहता है? मैं अभी सारी वानर सेना को और लक्ष्मण सहित राम को भी रणभूमि में परास्त करके रावण का दर्शन करूंगा। कहता है कि मैं रावण के पास बाद में जाऊंगा, पहले सबको परास्त कर दूं। महोदय ने कहा कि पहले आप महाराज रावण की बात सुन लो, उसके बाद फिर युद्ध में आप शत्रुओं को परास्त करना। तो कुंभकर्ण जो है अब जा रहा है, रावण के महल में गया। उस समय पहुंचे कुंभकर्ण रावण के पास और उस समय फिर जो है ना रावण के आदेश से राक्षस लोग और मदिरा लाए कुंभकर्ण के लिए। तो 2000 घड़े शराब के और उसको मिले, किसको? कुंभकर्ण को, और उसने पी लिए 2000 घड़ा। क्या पिया? शराब पिया। तब वो चला, तब उसको ताजगी आई, उसको थोड़ा मतलब अच्छा लगा और वो शक्ति संपन्न हो गया। फिर राक्षसों की सेना के साथ कुंभकर्ण रावण के महल की ओर चला। यमराज के समान जान पड़ता था और पैरों की धमक से पृथ्वी को कंपित कर रहा था। कुंभकर्णो बभौरुस्तं कालांतक यमोपमः भ्रातु सभवनं गच्छन् गच्छो बले समन्वितः कुंभकर्णः पदन्यासैर् अकंपयते मेदिनी। कुंभकर्ण को जब बानरों ने देखा तो बहुत भयभीत हो गए बानर लोग और श्री राम की शरण लेने लगे राम बानर लोग। कुछ तो देख करके ही गिर गए, कुछ पीड़ित होकर के दिशाओं में भाग गए, जहां तहां धराशायी हो गए बहुत से लोग, धरती पर लेट गए बहुत से बंदर। केचित् शरण्यं शरणं स्मरामं बृजन्ति केचिन् व्यथिता पतन्ति केचिन् दशश्च व्यथिता पतन्ति केचिन् भयार्ता भविष्यति स्म। कुंभकर्ण पर्वत शिखर के समान ऊंचा था, उसके मस्तक पर मुकुट शोभा देता था, वह अपने तेज से सूर्य का स्पर्श करता था जान पड़ता था। उस बड़े हुए विशाल काय अद्भुत राक्षस को देखकर सभी वानर भय से पीड़ित होकर इधर उधर भागने लगे। तो भगवान राम ने भी जब कुंभकर्ण को देखा तो कुंभकर्ण कैसा दिखाई पड़ रहा था, जैसे वामन भगवान बहुत बड़ा रूप धारण किया ना, तीनों लोगों को नापने के लिए अपने बड़े बड़े डग भरे, ऐसे कुंभकर्ण जो ना मालूम पड़ता था, बड़े बड़े उसके डग दिखाई पड़ रहे थे। और बानरों की सेना बहुत देर से भागने लगी कुंभकर्ण को देख करके। तब राम ने विभीषण से पूछा कि कौन विशाल का वीर है, तो ये राक्षस है या असुर है, मैंने ऐसे प्राणी को पहले कभी नहीं देखा। तब विभीषण ने भगवान राम को बतलाया कि ये कुंभकर्ण इसके बराबर लंबा कोई दूसरा राक्षस नहीं है, और इसने देवता दानव यक्ष नाग राक्षस गंधर्व विद्याधर और किन्नरों को हजारों बार युद्ध में मार भगाया है। इसके नेत्र बड़े भयंकर हैं, जब हाथ में फूल लेकर खड़ा हुआ युद्ध में तो सब देवता भी इसको मारने में समर्थ नहीं हो सके। ये काल रूप है ऐसा समझकर वे सब के सब भयभीत हो जाते हैं। इस राक्षस ने जन्म लेते ही बाल्यावस्था में भूख से पीड़ित हो कई हजार प्रजाओं को खा डाला था, कई हजार लोगों को खा डाला उसने जब बिल्कुल बचपन में था, जिसको भूख लगी थी। तो फिर जो है सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कुंभकर्ण की दुष्टता का वर्णन किया। तो फिर ब्रह्मा जी जो है साप देते हैं कुंभकर्ण को, क्या कहते हैं कि आज से तू मुर्दे के समान सोता रहेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये 6 महीने तक सोता रहेगा और 1 दिन जगेगा, लेकिन उस 1 दिन भी ये भूखा होकर पृथ्वी पर बिचरेगा और प्रज्वलित अग्नि के समान मुंह फैलाकर बहुत से लोगों को खा जाएगा। इसके बाद फिर कुंभकर्ण रावण से मिलता है और काफी लंबी बातचीत होती है रावण के साथ में, और फिर रावण के आदेश से वो राम की सेना में आता है। तो बताया गया है कि कैसा रूप था कुंभकर्ण का, 600 धनुष के बराबर विस्तृत और 100 धनुष के बराबर ऊंचा हो गया। उसकी आंखें 2 गाड़ी के पहियों के समान जान पड़ती थी, वह विशाल पर्वत के समान भयंकर दिखाई देता था।
धनुषत परिणाम ससत सत समुचित रौद्र सकट चक्राक्षो महापर्वत सन्निभा।
अब वो जो कुंभकर्ण है जब आया बानरों की सेना में तो उस पर्वताकार श्रेष्ठ राक्षस को देखते ही समस्त बानर हवा से उड़ाए गए बादलों के समान संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। किसी बंदर की हिम्मत नहीं हो रही है उसके सामने खड़ा होने की। ते दृष्ट्वा राक्षस श्रेष्ठम बानरा पर्वतोपमम वायु नुन्ना एव घना यो सर्वा दिशस्तदां। कुंभकर्ण बड़े हर्ष के साथ जलधर के समान गंभीर स्वर में बारंबार गर्जना करने लगा। आकाश में जैसी मेघों की गर्जना होती है उसी के समान उस राक्षस का घोर सिंहनाद सुनकर बहुत से मानर जड़ से कटे हुए वृक्षों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। कुंभकर्ण ने सून की भांति अपने एक हाथ में विशाल परख ले रखा था, वह बानरों को अत्यंत घोर भय प्रदान करता हुआ प्रलय काल में काल रुद्र के समान शत्रुओं का विनाश करने के लिए पुरी से बाहर निकला। अब कुंभकर्ण जब निकला तो आप जानते हो दरवाजे से नहीं निकला, दरवाजे से निकल भी नहीं सकता था वो तो वो कैसे निकला, जो चहार दीवारी है उसको लांग करके अपना पैर ऐसे बढ़ाया उधर से आया, दरवाजे से निकल ही नहीं सकता था वो। जब बानर लोग भाग रहे हैं तो राजकुमार अंगद ने नल नील गबांत और कुमुद को कहा वानर वीरो अपने उत्तम कुलों को याद करो ना, तुम कहां भागे जा रहे हो। अच्छा होगा तुम लोग लौट आओ, क्यों जान बचाने के फेर में पड़े हो। हाँ, अपने सामने उठी हुई राक्षसों की इस बड़ी भारी सेना को हम अपने पराक्रम से नष्ट कर देंगे, अतः वानर वीरो लौट आओ। किसने कहा? किसने कहा? अंगद ने, अंगद ने कहा बानरों को। तब वे महाबली बानर कुंभकर्ण के ऊपर ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर शिला और वृक्ष मारने लगे। उनकी मार खाकर कुंभकर्ण विचलित नहीं हुआ। उसके शरीर पर बहुत ही शिलाएं चूर चूर हो गईं और खिले हुए वृक्ष भी उसके शरीर से टकरा करके टुकड़े टुकड़े होकर के गिर पड़े। पेड़ भी टूट टूट कर गिरने लगे उसके शरीर पर। और कुंभकर्ण क्रोध में भरा हुआ अब बानरों को रौंदने लगा और बानर खून से लथपथ होकर धरती पर सो गए। उनकी कांति फीकी पड़ गई। बानर ऊंची नीची भूमि को लांघते हुए जोर जोर से भागने लगे। वे आगे पीछे अगल बगल कहीं भी नहीं देखते थे। कोई बानर समुद्र में गिर पड़े, कोई आकाश में ही उड़ते रह गए। इतना भयानक था कुंभकर्ण। उस राक्षस ने खेल खेल में ही जिन्हें मारा, वे दीन बानर जिस मार्ग से समुद्र पार करके लंका में आए थे उसी मार्ग से भागने लगे। भय के मारे बानरों के मुख की कांति फीकी पड़ गई। वे नीची जगह देख देख कर भागने और छिपने लगे। कितने ही रीछ वृक्षों पर जा चढ़े और कितनों ने पर्वतों की शरण ली। कितने ही बानर और भालू समुद्र में डूब गए। कितनों ने पर्वतों की गुफाओं का आश्रय लिया। कोई गिरे, कोई एक स्थान पर खड़े ना रह सके इसलिए भागे, कोई धराशायी हो गए और कोई कोई मुर्दों के समान सांस रोक कर पड़ गए। सांस रोक ली जैसे मर गए हों, ऐसे लेट गए जमीन में। इन बानरों को भागते देखकर अंगद ने फिर बुलाया कि नहीं, हम लोग सब मिलकर के युद्ध करेंगे।
कौन बुलाया?
अब अंगद के साथ में अब सब बानर जो है ना आए तो वृक्ष और बड़े बड़े पर्वत शिखर जो है ना लेकर के कुंभकर्ण पर धावा करते हैं। परंतु अत्यंत क्रोध में भरे हुए कुंभकर्ण ने गदा उठाकर शत्रुओं को घायल करके उन्हें चारों ओर से बिखेर दिया। कुंभकर्ण की मार खाकर 8,700 बानर तत्काल धराशायी हो गए। देखा, 8,700 बानरों को उसने घायल कर दिया। वह 16, 8, 10, 20, 30, 30 बंदरों को अपने दोनों भुजाओं से समेट लेता और उनको खा लेता था, मुंह में डाल लेता, खा जाता है। फिर विविध जो है ना जो बंदर है उसने एक पर्वत उखाड़ करके कुंभकर्ण पर आक्रमण किया। विविध ने कुंभकर्ण के ऊपर वो पर्वत फेंका लेकिन उस राक्षस तक ना पहुंच करके उसकी सेना में ही गिरा। उस पर्वत शिखर ने राक्षसों की सेना के कितने घोड़े हाथी रथ को कुचल डाला। तब भयानक सिंहनाद करने वाले राक्षस सेना के रथियों ने यमराज के समान भयंकर बाणों से गरजते हुए बानरों के मस्तकों को सहसा काटना आरंभ किया। उन बानरों ने कुपित होकर के श्रेष्ठ पर्वत के समान भयानक शरीर वाले कुंभकर्ण पर बड़े वेग से प्रहार किया। उनके उस मार से कुंभकर्ण व्याकुल हो उठा। अब कुंभकर्ण को पहली बार तकलीफ हुई। उसका सारा शरीर चर्बी से गीला हो गया और वह खून से नहा गया। फिर तो उसने भी बिजली के समान चमकते हुए फूल को घुमाकर जिसके शिखर पर आग जल रही थी उस पर्वत के समान हनुमान जी की छाती पर उसी तरह मारा जैसे कार्तिकेय ने क्रौंच पर्वत पर आघात किया था। हनुमान जी के दोनों भुजाओं के बीच का भाग विदीर्ण हो गया। वे व्याकुल हो गए और मुंह से खून बहाने लगे। उस समय पीड़ा के मारे उन्होंने बड़ा भयंकर आर्तनाद किया। हनुमान जी को पीड़ित देख करके राक्षस बहुत प्रसन्न हो गए और बहुत जोर जोर से कुलाहल करने लगे। इसके बाद फिर नील ने कुंभकर्ण के ऊपर एक पहाड़ मारा लेकिन कुंभकर्ण ने एक मुक्का मार दिया नील के ऊपर जिससे नील भी जो है पृथ्वी में गिर पड़े। यद्यपि ये बानर जोर जोर से प्रहार करते थे तो भी ऐसा मालूम पड़ता था जैसे उसे कोई धीरे से छू रहा है। तो उसे बिल्कुल पीड़ा नहीं हुई। उसने वेगशाली ऋषभ को अपने दोनों भुजाओं में भर लिया। कुंभकर्ण की दोनों भुजाओं से दबकर पीड़ित हुए भयंकर बानर ऋषभ के मुंह से खून निकलने लगा और वे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर सर्प को कुंभकर्ण ने मारा, नील को घुटने से रगड़ दिया, गवाक्ष को थप्पड़ से मारा और गंधमादन को बड़े वेग से लात मारी। ये सब बानर मूर्छित हो गए कुंभकर्ण की मार से। अब कुंभकर्ण को और गुस्सा आया तो वो क्या करता है कि वो बानरों को दोनों हाथों से पकड़ पकड़ के खाने लगा। तो कुंभकर्ण के जो है नाक से वो बंदर बाहर निकलते थे। वो मुंह से खाता था बंदरों को और बंदरों क्या करते थे, उसके नाक के छेद से बाहर निकलते थे। इसके बाद फिर अंगद ने जो है ना अंगद ने उसको जो है ना उछल के छाती में थप्पड़ मारा। अंगद की थप्पड़ खा करके वो राक्षस मूर्छित हो गया। अंगद में देखो कितनी शक्ति थी। जब थोड़ी देर में होश आया तो उस राक्षस ने बाएं हाथ से मुक्का बांधकर अंगद पर प्रहार किया, जिसे वे भी बेहोश होकर के पृथ्वी में गिर पड़े। अब सुग्रीव की तरफ दौड़ा कुंभकर्ण, तो सुग्रीव ऊपर की तरफ उछले। सुग्रीव ने एक पर्वत शिखर को उठा लिया और कुंभकर्ण पर मारा। उस समय वो कुंभकर्ण का सारा शरीर रक्त से नहा उठा और बड़े बड़े बानरों को खाता हुआ वो सामने खड़ा था। तब सुग्रीव ने कहा कि अगर शक्ति हो तो मेरे चलाए हुए इस पर्वत की चोट सहो। तो कुंभकर्ण बोला कि तुम प्रजापति रक्ष राजा के पुत्र हो, धैर्य और पौरुष संपन्न हो, इसलिए इस तरह गरज रहे हो। अब सुग्रीव के द्वारा छोड़ा हुआ जो पर्वत था उससे उसको छाते में बहुत चोट लगी, लेकिन वो पर्वत भी उसके छाते से टकरा करके चूर चूर हो गया और सुग्रीव बड़े दुखी हो गए। अब कुंभकर्ण को बहुत क्रोध आया और उसने सुग्रीव के वध के लिए अपने फूल को छोड़ा। तो हनुमान जी जो है हनुमान जी ने बड़े प्रसन्नता के साथ अपने घुटनों में लगा करके उस फूल को तोड़ दिया, दोनों हाथों से पकड़ करके उसका फूल तोड़ दिया हनुमान जी ने। इससे जो है जितने भी बानर थे बहुत प्रसन्न होकर के हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। इसके बाद उसने जो है मलय पर्वत का शिखर उठा करके सुग्रीव को मारा। सुग्रीव युद्ध भूमि में गिर गए और राक्षस लोग बड़े प्रसन्न हुए। उस समय कुंभकर्ण सुग्रीव को लेकर के और अब वो भागने लगा और लंका की तरफ जा रहा है। सुग्रीव बेहोश हो गए हैं और राक्षस कुंभकर्ण क्या कर रहा है, सुग्रीव को लेकर के लंका की ओर जा रहा है। बानर लोग बड़े दुखी हो गए हैं। अब हनुमान जी सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं। हनुमान जी सोच रहे हैं अगर मैं चाहूं तो इस राक्षस को मार सकता हूं, कुंभकर्ण को, और सुग्रीव को छुड़ा सकता हूं, लेकिन अगर मैं ऐसे करूंगा तो सुग्रीव का यश नष्ट हो जाएगा और सुग्रीव को जब होश आएगा तो आगे चल करके वो खुद ही अपने को छुड़ा सकते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कुछ किया नहीं। हनुमान जी का एक विशेष ये गुण है कि वे जहां आवश्यकता समझते हैं वहां अपना पराक्रम दिखाते हैं, नहीं तो पराक्रम नहीं दिखलाते हैं। इसलिए हनुमान जी ने कुछ किया नहीं और आगे चलकर के कुंभकर्ण जो है वहां सुग्रीव को ले जा करके लंका में घुस गया और उसके ऊपर राक्षस लोग जो है सुगंधित पानी गिराने लगे। तो सुग्रीव को होश आ गया और जैसे सुग्रीव को होश आ गया तो सुग्रीव उसकी पकड़ से छूट गए उसके दोनों कानों को नोच लिया और उसकी नाक काट ली, दांतों से उसकी नाक काट ली और कानों को नोच लिया, उसकी दोनों पसलियां फाड़ डाली सुग्रीव जी ने, तो इससे जो है ना उसका पूरा शरीर लहू लुहान हो गया। तो सुग्रीव को घुमा करके जमीन में पटक दिया तो भूम पर रगड़ने लगा सुग्रीव को, लेकिन सुग्रीव जी गेंद की भांति देख पूर्वक आकाश में चले और रामचंद्र जी से आकर के मिल गए। अब उसके दोनों नाक और कान, उसके दोनों कान और नाक कट चुके थे, अपने अंगों से खून बह रहा था, जैसे पर्वत से पानी के झरने गिरते हैं ऐसे खून का झरना बह रहा उसके नाक और कान से। अब फिर से वो विचार करता है कि मैं युद्ध करूं, तो फिर से वो आया अब युद्ध भूमि में, उसने बहुत बड़ा मुद्गर ले लिया अपने हाथ में। उस समय कुंभकर्ण को बहुत भूख लग रही थी, तो बानर सेना में प्रवेश करके वो बानरों और भालुओं को खाने लगा और राक्षस पिशाचों को भी खाने लगा, अपनी सेना के राक्षसों को भी खाने लगा, बानरों को भालुओं को सबको खाने लगा। भूख में इतना परेशान हो गया कि तो शत्रु मित्र का भेद नहीं रहा उसको। बहुत से राक्षसों को बानरों को समेट करके अपने मुंह में झोंक लेता था वो।
वह पर्वत शिखरों की मार खाता हुआ भी
7, 8, 20, 30, 100 बंदरों को अपने दोनों भुजाओं में भर लेता और खाता हुआ दौड़ता फिरता था।
उसके शरीर में खून और चर्बी लिपटी हुई थी और कानों में आंतों की मालाएं उलझी हुई थी। फिर उसने लक्ष्मण जी से युद्ध किया,
लक्ष्मण जी से युद्ध किया उसने। कुंभकर्ण के जो है ऊपर बाणों की वर्षा की लक्ष्मण जी ने, उसका कवच उसका तोड़ दिया। तब कुंभकर्ण जो है बड़ा प्रसन्न हुआ लक्ष्मण जी से, और फिर वो कहता है कि अब मैं राम के पास जाना चाहता हूँ, अब मैं राम से युद्ध करना चाहता हूँ। तो फिर वो राम के सामने आया। फिर श्री राम के राम ने रौद्रास्त्र का प्रयोग करके कुंभकर्ण के हृदय में अनेक तीखे बाण मारे। श्री राम के बाणों से घायल होकर वह सहसा उन पर टूट पड़ा। उसमें क्रोध से भरे हुए कुंभकर्ण के मुख से अंगार मिश्रित आग की लपटें निकल रही थीं। तस्य रामेण विद्धस्य सहसा भी प्रदावतः अंगार मिश्रा क्रोधस्य मुखान्यस्तेरुरस्ति सहं। श्री राम के अस्त्र से पीड़ित होकर के राक्षस कुंभकर्ण घोर गर्जना करता और रणभूमि में बानरों को खदेड़ता हुआ क्रोध पूर्वक उनकी ओर दौड़ा। श्री राम के बाणों में मोर के पंख लगे थे, वे कुंभकर्ण की छाती में धस गए, अतः व्याकुलता के कारण उसके हाथ से गदा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। और भी आयोध्य उससे भूमि पर जब गिर गए, जब उसे समझ लिया कि अब मेरे पास कोई हथियार नहीं है, तो दोनों मुख को हाथों से ही बानरों का उसने संहार करना शुरू किया। खून से लथपथ और क्रोध से व्याकुल होकर बानरों भालुओं और राक्षसों को खाता हुआ चारों ओर दौड़ने लगा। फिर उसने एक भयंकर पर्वत का शिखर उठाया और रामचंद्र जी की ओर चला दिया, परंतु राम ने धनुष का संधान करके सीधे जाने वाले 7 बाण मारकर पर्वत शिखर को बीच में ही टूक टूक कर दिया, अपने पास आने नहीं दिया। श्री राम के बाणों द्वारा पर्वत कट गया और उस शिखर ने गिरते गिरते 200 बंदरों को धराशायी कर दिया।
तम्बेरु शिखराकारम ज्योतमानम एव श्रियाम द्वेषते वानराणाम च पतमानम अपातयन्।
भगवान राम जो है उसकी तरफ देखने लगे कुंभकर्ण की ओर, और उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए। कुंभकर्ण के बल से पीड़ित और समस्त वानरों का हर्ष बढ़ाते हुए बड़े वेग से उस राक्षस पर धावा किया भगवान राम ने। उत्तम तरकस और बाण बांध लिए और वानरों को आश्वासन देकर कुंभकर्ण पर बड़े वेग से आक्रमण किया।
कुंभकर्ण के सारे अंग खून से लथपथ थे, वह क्रोध पूर्वक वानरों को खोज रहा था, वह मेघ के समान मुंह से रक्त की वर्षा कर रहा था।
श्री राम ने तत्काल अपना धनुष खींचा, उनके धनुष की टंकार सुनकर कुंभकर्ण कुपित हो गया और टंकार ध्वनि को सहन न करके अब राम की ओर दौड़ा। और राम क्या कहते हैं, राम कहते हैं राक्षसराज आओ विषाद ना करो, मैं धनुष लेकर खड़ा हूँ।
मुझे राक्षस वंश का विनाश करने वाला समझो, अब तुम भी दो ही घड़ी में अपनी चेतना खो बैठोगे। तो यही राम है, ये जानकर वह राक्षस विकृत स्वर में अट्टहास करने लगा और अचन कुपित हो रण क्षेत्र में बाणरों को भगाता हुआ उनकी ओर दौड़ा। कुंभकर्ण समस्त बाणरों के हृदय को विदीर्ण सा करता हुआ विकृत स्वर में जोर जोर से हंसकर मेघ के समान गंभीर और भयंकर वाणी में राम से बोला, राम मुझे विराध कबंध और खर नहीं समझना, मैं मारीच और बाली भी नहीं हूँ, ये कुंभकर्ण तुमसे लड़ने के लिए आया है। मेरे नाक कान नीचे से कट गए हैं, ऐसा समझकर तुम्हें मेरी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इन दोनों अंगों के नष्ट होने से मुझे थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं होती है। कुंभकर्ण की ये बात सुनकर श्री राम ने उसके ऊपर सुंदर पंख वाले बहुत से बाण मारे। वज्र के समान वेग वाले उन बाणों की गहरी चोट खाने पर भी वह राक्षस ना तो क्षुब्ध हुआ न व्यथित हुआ। जिन बाणों से ताल वृक्ष काटे गए और बाली का वध हुआ, वे बाण उस समय कुंभकर्ण के शरीर को व्यथा ना पहुंचा सके। देखिए कितना आश्चर्य है, कुंभकर्ण जल की धारा के समान श्री राम के बाणों को अपने शरीर से पीने लगा और भयंकर मुद्गर को चारों ओर से घुमा घुमाकर उनके बाणों के वेग को नष्ट करने लगा। फिर वह राक्षस देवताओं की सेना को भयभीत करने वाले और खून से लिपते हुए उस वेगशाली मुद्गर को घुमा घुमाकर बाणरों की सेना को खदेड़ने लगा। ये देख भगवान राम ने वायव नामक दूसरे अस्त्र का संधान करके उसे कुंभकर्ण पर चलाया, उसके द्वारा उस निशाचर की मुद्गर सहित दाहिनी बांह काट डाली। बांह कट जाने पर राक्षस भयानक आवाज में चीत्कार करने लगा, दाहिनी भुजा काट डाली। वायव्य मादाय ततो पराश्रम रामा प्रतिक्षेप निशाचराय समुद्गरम तेन जहार बाहुम सकृत बाहु सुमूलम नादय। राम के बांह से कटी हुई वह बांह जो पर्वत शिखर के समान जान पड़ती थी मुद्गर के साथ ही वानरों की सेना में गिरी, उसके नीचे दबकर कितने ही वानर सैनिक अपने प्राणों से हाथ धो बैठे। उसकी कटी हुई भुजा के नीचे दबकर के भी बहुत से बंदर मर गए। सोचिए, और जो मरने से बच गए वे खिन्न चित होकर किनारे पर जाके खड़े हो गए। अब किसी की हिम्मत नहीं होती है लड़ने की, किनारे पर जाके खड़े हो गए। उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी, वे चुपचाप श्री राम और कुंभकर्ण के घोर संग्राम को देखने लगे। अब एक बाह कर जाने पर कुंभकर्ण शिखरहीन पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। उसने एक ही हाथ से एक ताल का वृक्ष उखाड़ लिया और महाराज राम पर धावा किया। अब बाएं हाथ से ताल का पेड़ उखाया। अब राम ने ऐंद्रास्त्र से उस सर्प के समान उठी राक्षस की दूसरी बाहें को भी वृक्ष सहित काट गिराया। वो कटी हुई बाहें पर्वत शिखर के समान पृथ्वी पर गिरी और छटपटाने लगी। वो हाथ छटपटाने लगा। उसने कितने ही वृक्षों शिलाओं बाणरों और राक्षसों को भी कुचल डाला उस भुजा ने। उन दोनों भुजाओं के कट जाने पर वह राक्षस ऐसा आर्तनाद करता हुआ श्री राम पर टूट पड़ा। उसे आक्रमण करते देख श्री राम ने दो तीखे अर्धचंद्राकार बाण लेकर उनके द्वारा उस राक्षस के दोनों पैर भी काट डाले। उसके दोनों पैर दिशा विदिशा पर्वत की कंदरा महासागर लंकापुरी बाणों और राक्षसों की सेना को भी प्रतिध्वंस करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। अब सोचो पैर कितने बड़े थे वो जब गिरे। दोनों बाहों और पैरों के कट जाने पर उसने बटवा नल के समान अपने विकराल मुख को फैलाया और जैसे राहु आकाश में चंद्रमा को ग्रस लेता है उसी प्रकार वह राम को ग्रसने के लिए भयानक गर्जना करता हुआ सहसा उनके ऊपर टूट पड़ा। दोनों हाथ दोनों पैर कट गए, मुंह खोल करके अब राम के ऊपर वो घिसट घिसट करके चल रहा है। तब रामचंद्र जी ने सुवर्ण जड़ित पंख वाले अपने तीखे बाणों से उसका मुंह भर दिया। मुंह भर जाने पर वह बोलने में असमर्थ हो गया और बड़ी कठिनाई से आर्तनाद करके मूर्छित हो गया। इसके बाद भगवान राम ने ब्रह्मदंड और विनाशकारी काल के समान भयंकर तीखा बाण चलाया, उसके ऊपर चलाया तो उनकी भुजाओं से प्रेरित होकर वह बाण अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ इंद्र के वज्र की भांति भयंकर वेग से चला। और जैसे इंद्र ने वृत्रासुर का मस्तक काट डाला था
उसी प्रकार उस बाण ने राक्षसराज कुंभकर्ण के महान पर्वत शिखर के समान ऊंचे सुंदर गोलाकार दाढ़ों से युक्त और हिलते हुए मनोहर कुंडलों से अलंकृत मस्तक को अलग कर दिया। कुंभकर्ण का वह मस्तक जो है ना कटा हुआ जो मस्तक है वो लंका पर गिरा। उसने अपने धक्के से सड़क के आसपास के कितने मकानों को तोड़ दिया। उसका कटा हुआ मस्तक भी जो है ना कई मकानों को तोड़ दिया। उसने दरवाजे और ऊंचे परकोटे को भी गिरा दिया। तद राम बाणा भ्यतम बपात रक्षा सिरा पर्वत संकाशम पभंज सरिया गृह गोपुराणी प्राकार उच्चम तम पाते अच्छम। इसी प्रकार उस राक्षस का विशाल धड़ भी जो हिमालय के समान जान पड़ता था तत्काल समुद्र के जल में गिर पड़ा और बड़े बड़े ग्राहों मत्स्यों और सांपों को पीसता हुआ पृथ्वी के भीतर समा गया। तच्चातिकायम हिमवन प्रकाशम रक्षस सदा तो पपात ग्राहन परान मीन वरान भुजंगमान मर्द भूमि तथा विवेश। ब्राह्मणों और देवताओं के शत्रु महाबली कुंभकर्ण के युद्ध में मारे जाने पर पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत हिलने लगे और संपूर्ण देवता हर्ष से भरकर तुमुल नाद करने लगे। तस्मिन हते ब्राह्मणे देव शत्रु महाबले संयति कुंभकर्णे
तचाल भूर भूमि धरा च सर्वे हर्षा च देवा तुमुलम प्रणे दुहु
धरा च सर्वे हर्षा च देवा तुमुलम प्रणे दुहु। उस समय आकाश में खड़े हुए देवर्षि महर्षि सर्प देवता गरुड़ यक्ष और गंधर्व श्री राम का पराक्रम देखकर बहुत प्रसन्न हुए तथा सुदेवर्षि महर्षि पन्नगा सुराश्च भूतानि सुपर्ण गोह्यकाम यक्ष गंधर्व गणान भोगता प्रहर्षिता राम पराक्रमेण। कुंभकर्ण के महान वध से राक्षसराज रावण के बंधुओं को बड़ा दुख हुआ। वे श्री राम की ओर देखकर उसी तरह उच्च स्वर से रोने कलपने लगे जैसे सिंह पर दृष्टि पड़ते ही हाथी चीत्कार करने लगते हैं। तथा सुते तस्य वधे न भूरिणा मनस्विनो ने ऋतराज बांधवा विनय दुरुच्चैर विषधारकोत्तमम हरिम समीक्ष वेतामसंगजम। देवताओं को दुख देने वाले कुंभकर्ण का युद्ध में वध करके वानर सेना के बीच में खड़े हुए भगवान श्री राम अंधकार का नाश करके राहु के मुख से छूटे हुए सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। देव लोक से तमो निहत्य सूर्यो यतारा हो मुखाज मुक्ता तथा विभाषील हरि सैन्य मध्य निहत्य रामो यदि कुंभकर्णम। भयानक बलशाली शत्रु के मारे जाने से बहुसंख्यक बानरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके मुख विकसित कमल की भांति हर्ष से खिल उठे और उन्होंने सफल मनोरथ हुए भगवान श्री राम की भोरी भोरी प्रशंसा की। प्रहर्षनी और भावस्य वानरा प्रबुद्ध पन्न प्रतिमेरे वानन अपूजिन राघव मिश्र भागिनम हतेरे पौभी में बले निपात्मजन। जो बड़े बड़े युद्धों में कभी पराजित नहीं हुआ और देवताओं की सेना को भी कुचल डालने वाला था उस महान राक्षस कुंभकर्ण को रणभूमि में मारकर श्री रघुनाथ जी को वैसी ही प्रसन्नता हुई जैसे वृत्रासुर का वध करके देवराज इंद्र को हुई थी। त कुंभकर्णम सुरसन्न मर्दनम महासुयुद्धे सु कदाचनाजितम आनंद हत्वा भरताग्रजोरणे महासुरम दस्य में मामराधिपहा। कुंभकर्ण के वध का बड़ा विस्तृत वर्णन था। मैं तो बीच में काफी छोड़ चुका हूँ, काफी विस्तृत इसका युद्ध है और बड़ा अद्भुत युद्ध है। धन्यवाद। श्री राम जन्म महामहोत्सव की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की श्री श्री राधा पाशार्थी ललिता विशाखा की श्री श्री गोंडदाय भगवान की श्री श्री सीताराम